اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، انسان گنہگار ہے، اور اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں، انسان فقیر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے بادشاہ، بہت زیادہ عطا فرمانے والے، ہمارے نیک عمل کمزور بے جان ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے، ہم جاہل ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی علم اور ہدایت دینے والے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور اللہ کی رحمت کے خزانے میں سب کچھ ہے، ہم ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں پر نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہم اپنی توبہ بار بار توڑ دیتے ہیں، غلطی کی، توبہ کی، پھر غلطی کر لی، اللہ سبحانہ و تعالی پھر پردے ڈال دیتے ہیں اور موقع دے دیتے ہیں، ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے، ڈس رسپیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنی نعمتیں دیتے رہتے ہیں، اتنے بڑے مہربان رحیم کریم اللہ سبحانہ و تعالی، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، قرآن شریف میں ان کی مثال ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایسی بھی طاقت نہیں کہ سب کے سب جمع ہو کر ایک چھوٹی سی مکھی بنا سکیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، سب جمع ہو جائیں، اپنی فیکٹریاں، کارخانے، سائنس، ایجادات جمع کر لیں اور ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے دکھائیں، نہیں بنا سکتے، ایسے عاجز. پھر آگے یہ مثال بتائی کہ مکھی بنانا تو کیا، اگر ایک مکھی آ کر ان کے کوئی چیز چھین کر لے جائے، دسترخوان میں سے کوئی چیز، ایک کوئی چیز لے کر اڑ گئی مکھی، تو یہ اتنے بے بس ہیں، عاجز ہیں کہ وہ واپس بھی نہیں لا سکتے، ایسا مخلوق کا حال ہے. جگہ فرمایا کہ یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے بیج، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، چھوٹا سا پلاسٹک کی طرح، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھتے. جو آدمی اللہ سے تعلق مضبوط کر لے گا، اللہ پاک کے سارے مسائل حل فرمائیں گے اور دنیا آخرت میں اس کو بھلائی برکتیں عطا فرمائیں گے. جب بندہ اللہ کو شوق اور محبت سے یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان سے یاد فرماتے ہیں. بندہ یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے. بندہ یاد کرتا ہے توبہ استغفار سے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتے ہیں مغفرت سے، فورگیونیس. بندہ یاد کرتا ہے سوال اور دعا سے، اللہ تعالیٰ بخشش اور عطا سے یاد فرماتے ہیں. بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کی، اللہ کے راستے کی محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نعمت سے یاد کرتے ہیں، اس کو نعمت دو، نعمت دو. بندہ جب عبد بن جاتا ہے، میں تو بندہ ہوں، انسانیت اور بندگی کی معراج اور سب سے اونچا مقام جہاں انسان ترقی کر کے پہنچ سکتا ہے، کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سر کو جھکا کے زمین پہ ڈال دیں، یہ سب سے اونچی اڑان ہے انسان. اس وقت بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے میں، نفل نمازوں میں اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں تو خوب پڑھی جائیں، قرآن حدیث کی دعائیں، اور ویسے بھی نماز میں آدمی اپنے دل میں اردو میں سوچ سکتا ہے، نماز میں بھی، اس کے باہر بھی، نماز کے باہر تو مانگ سکتا ہے دعائیں اپنی زبان میں. تو اپنی زبان میں دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ کے بارگاہ میں ہر چیز کا خزانہ، ہر چیز کا خزانہ ہے اور ہر مسئلے کا حل ہے، ہر چیز وہیں سے حل ہوگی، اوپر سے حکم آئے گا تو پھر کام بنے گا. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہماری مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ پاک آپ سب کو بہترین نفع دینے والا علم عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں، مال میں، جان میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور بچوں، بڑوں، عورتوں سب کو اللہ پاک ایک عمل صالح، ایک پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عطا فرمائے، اور ہم شیطان اور نفس کی چالوں سے بچ جائیں، اور اللہ پاک کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے لیے سیکنڈ نیچر ہو جائیں کہ ہمیں وہ چیز پسند آنے لگے. खुद ब खुद बगैर किसी दलील के सारा दीन हम सीख लें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। ऐसी ऐसी नियतें करें अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, दीन सीखने का तरीक़ा सलीका हमें मिल जाए। हम मशगूल हैं, कमज़ोर हैं, जाहिल हैं, हमारा वक्त कहीं और जा रहा है, सेहत ताकत नहीं है, चंद सालों के बाद वो भी नहीं रहेगा, फिर कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, फिर बिस्तर पर लेट के नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, ये हालात एक जैसे नहीं रहते। तो अल्लाह पाक हमें जो वक्त है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 1 घंटा है, या अल्लाह हमें दीन सिखा दीजिए। सारे दीन सीखने का मकसद ये कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए, हमें बिल्कुल एम आई ऑन द राइट ट्रैक, हाउ एम आई ड्राइविंग कहते हैं, कि ज़िंदगी में कैसे गुजार रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं, उसकी अलामत है, उसके साइंस, और उन चीज़ों को लाने की मेहनत है कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी होगा कि नहीं होगा, तो इसकी कोशिश करनी। फितने के ज़माने में जो आदमी दीन पर अमल कर लेगा, भाई फितना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अखबार में कुछ कह रहे हैं, टीवी में कुछ कह रहे हैं, पड़ोसी कुछ और कह रहे हैं, दफ्तर वाले कुछ और कह रहे हैं, और कह रहे हैं किताबों में तो ये लिखा है, आप कुछ और बता रहे हैं। फितने का ज़माना है, हर आदमी कंफ्यूज परेशान। फितने के ज़माने में जो आदमी दीन पर अमल कर लेगा, अल्लाह का तरीक़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो उसको 50 सहाबा के अमल के बराबर सवाब मिलेगा, ऐसा हदीस शरीफ में बशारत। तो फितने के ज़माने में अमल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ईमान लाया, देखे बगैर ईमान लाया। जो आदमी एक सुन्नत जिंदा करेगा, जिसको लोग भूल चुके थे, मिट चुकी थी, उसको जिंदा किया उसने सुन्नत, 100 शहीदों का सवाब मिले। आखिरी ज़माने में, आज के ज़माने में सवाब की लूट है। आदमी परेशान होने के बजाय, एक आदमी बाजार गया, अब कहीं नज़र नहीं बचा सकता, अभी इधर उधर कहीं परेशान, आँख बंद करके खड़ा है। जो आदमी उसमें अपनी आँख बचा लेगा तो अल्लाह का वली हो जाएगा। तो फितने से, परेशानी से घबराना नहीं है, वो इसलिए है कि आपके दर्जात बुलंद हो। अल्लाह पाक का एक टेस्ट है कि कौन आदमी तकवा अख्तियार करेगा, कौन आदमी अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेगा। सुबह शाम जिक्र की कुछ फजीलत आमाल, कुछ दरूद ये पढ़े जाएं, उनसे आदमी में रूहानी ताकत आती है, रूहानी ताकत। सुबह उठे, नाश्ता किया आदमी, फिर काम में लगा, इसी तरह सुबह उठे, अब दरूद, जिक्र, तिलावत, इस्तिगफार, तस्बीहात, इनसे आदमी को तवानाई मिलेगी, दिन भर के कामों में कुव्वत मिलेगी। तो कुछ अहादीस तैयबा में मशहूर कुछ वज़ायफ आते हैं कि सुबह शाम पढ़े जाएं, तो वो याददहानी के चीज़ें दोहराए जाते हैं हर दफ़ा। जो आदमी सुबह और शाम 7 मरतबा ये पढ़ ले, सूरह तौबा की आखिरी आयत का टुकड़ा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह पाक उसके बड़े बड़े कामों के लिए आसान कर देंगे, दिन भर के उसके काम आसान कर देंगे। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह शाम इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ लें, और 3 मरतबा कोई ऐसा इस्तिगफार जो हदीस शरीफ में आया, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूब इलैह, 3 दफ़ा पढ़ लें, तो उसके सगीरा गुनाह, बहुत सारे छोटे बड़े गुनाह, मिस्टेक्स जो मालूम भी नहीं होते कि अरे गुनाह है, होते चले जाते हैं, टिकट जमा हो गए 10, 15, 20, 100, इस्तिगफार करके उनको आदमी मिटवा लें, वरना जमा हो जाएंगे वो, फिर आदमी को नेकी की तौफीक भी छूट जाएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये 7 टाइम्स इसको पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, नमाज ख़त्म हुई फजर की और मगरिब की, उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, आदमी को जहन्नम से रहाई हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, ये दुआ हदीस शरीफ की जो पढ़ेगा तो सुबह शाम तमाम मुसीबतों बलाओं से उसकी हिफाजत रहेगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम। इसके अलावा मज़ीद और औराद हैं, चौथा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन। सुबह और शाम 10-10 मरतबा, फजर के बाद और असर के बाद पढ़ लिया, और कहीं बाजार में गया वहाँ एक दफ़ा भी पढ़ लेगा तो उसको 10 लाख नेकियाँ मिलेंगी, बिलियन गुड डीड। नेकियाँ कमाने का नुस्खा है, आदमी की ज़बान मशीन की तरह चलती रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, माशाअल्लाह, दरूद शरीफ पढ़े, नेकियों के पहाड़ ले जाए। दिन और रात में 1440 मिनट होते हैं, एक दिन और रात में 1440 मिनट होते हैं। ये आपकी पूंजी है, आखरत का सरमाया है। अब हिसाब लगाओ, एक साल में अगर गलती ना हो तो एक साल में आधे मिलियन मिनट्स होते हैं, हाफ मिलियन मिनट्स एक आदमी की जिंदगी, और पूरी जिंदगी में 60 साल में उसको 30 मिलियन मिनट्स होते हैं। ये आपका बैलेंस है। किसी को कहें आपको 30 मिलियन सोने के सिक्के दे दिए गए, आप कैसा खुश होगा, अच्छा होगा। अब इसमें से जितने चाहो आखिरत को ले जाओ, जितने चाहो यहाँ फेंक के कब्र में चले जाओ। आदमी की ये जिंदगी, पहले बताया जा चुका कि आज होता यह है कि खाने पीने चीज़ें सोने जागने तहारत बाजार जाने खाने पकाने, अगर आदमी गाफिल है, ऐसी कर रहा है जैसे सभी कर रहे थे, मुसलमान गैर मुसलमान हम भी कर रहे थे, जा रहे थे आ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, कोई बेख्याली कुछ काम नहीं, मुसलमान गैर मुसलमान सभी करते हैं ये, तो दिन का और ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इसी में ख़त्म हो जाता है। 1/3 सोने में, 1/3 काम में, और उसके बाद 1/4 ज़रूरियात ज़िंदगी में। और होता क्या है कि एक 60 साल की ज़िंदगी में मुश्किल से 4 साल आदमी को मिलते हैं जिसमें वो कुछ आखरत का काम कर सकता है, और दिन के 24 घंटे में कोई 2 घंटे मिलते हैं जिसमें आखरत का काम कर सकता है। होता यह है कि जो 30 मिलियन मिनट्स थे उसमें से सारे अक्सर तो ज़ाया हो गए, फेंक फाँक दिए, बस कोई 4 मिलियन मिनट्स रह गए। तो अब उसको आदमी जिक्र तिलावत तस्बीह सदक़ात दावत कुरान पढ़ना दावत देना अच्छी बात करना इनमें खर्च करे और इन इनको कैश करे आखरत के लिए, करेंसी तब्दील करे, तो वहाँ जाके फ़ायदा होगा, वरना वो भी फेंका जाए। फिर उसके बाद वो किया कैसे, उसमें सिद्क सच्चाई थी कि नहीं, उसमें इखलास था कि नहीं, उसमें रिया तो नहीं था, उसमें शो ऑफ तो नहीं थी। अब दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, नेकी तो कर ली, अब उसकी क्वालिटी चेक की जा रही। तो भाई बहुत चौकलना रहने की ज़रूरत है। इसलिए वो कहते हैं सारे लोग गफलत में और उसमें होते हैं, सवाए वो जिनको जो कि जिनको समझ है, जिनको समझ आ गई यानी अंडरस्टैंडिंग, उनको बात समझ में आ गई। और जितने लोग जिनको बात समझ में आ गई वो भी सारे बहुत ख़तरे में हैं, सवाए इसके कि जो अमल करने वाले, और जो अमल करने वाले हैं वो सब भी बहुत ख़तरे में हैं, सवाए वो जो उनमें से इखलास वाले, और इखलास वाले भी उस वक्त तक ख़तरे में जब तक मामला तय ना हो जाए अल्लाह के दरबार। दुनिया में नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, गिना नहीं कितनी हुई क्या हुई, वहाँ जाके अगर कह दिया गया कि हाँ भाई ये पास हो गया जाओ जन्नत में, अब खुश हो जाओ, अपना मैं अमर लो उछलो कूदो, जितना ऐलान करना है अनाउंसमेंट करने हैं जाके दिखाना है पेरेंट्स को रिश्तेदारों को, ये देखो मेरा नाम है अमाल, ये उछलने कूदने और सेलिब्रेशन वहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डरते रहो पता नहीं अभी तक हुआ कि नहीं, जमा करो जमा करो जमा। एक एक नेकी के लिए आदमी भागा फिरेगा क़यामत, ना अम्मा देंगे ना अब्बा देंगे ना कोई बच्चे कोई नेकी देंगे, सब भागेंगे, भागो भागो भागो, नहीं देते। हाँ जब तकसीम हो गया नाम है अमल और फैसला हो गया कि ये जन्नती हैं, अब खुश खुश सब एक दूसरे के पास आएंगे, ये देखो मेरा नाम है अमल पास हो गया, बस हो गया, अब सब इकट्ठे हो गए। उस वक्त से पहले तक कोई सेलिब्रेशन नहीं है, आदमी खूब मेहनत करे, अल्लाह से मांगे अल्लाह पाक हमें आपको जन्नत के आला दर्जात अता फरमा दे, आमीन। दरूद शरीफ के फजाइल पढ़े जाएंगे, दरूद शरीफ दुनिया आखरत में बहुत बड़ा फजाइल और फ़ायदा पहुँचाने वाला काम है। अली रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिसने जुमे के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक नूर होगा, अगर उसको तमाम मखलूक में तकसीम किया जाए तो सबको काफ़ी हो जाएगा। जुमे के दिन 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक, ये दरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ने का ऐसा सवाब है कि 10,000 दरूद के बराबर। नमाज वाला दरूद पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी, आज बुजुर्गों ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, ये भी हदीस शरीफ में है कि जो जुमे के दिन 80 मरतबा ये दरूद पढ़े असर के बाद, एक रिवायत में असर के बाद बैठ जाए कि दफ्तर में है कहीं पर है, 2 मिनट को बैठ गया और 80 टाइम्स ये दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मीय व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 80 साल के सगीरा गुनाह छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, बड़े बड़े गुनाह कबीरा वो तो उसके लिए तौबा करनी पड़ेगी। उमर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर रोशन रात यानी चमकदार रात यानी जुमेरात की जो रात है, फ्राइडे नाइट जो जुमे की रात से पहले, जुमे के दिन से पहले जो नाइट है, और रोशन दिन यानी जुमे में कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होता है और मैं तुम्हारे लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में जिंदा है, तो फरिश्ते जाकर दरूद शरीफ पेश करते हैं, तो वहाँ से दुआ हो जाए तो अल्लाह पाक खुश हो जाए। हमें चाहिए कि इतने फजाइल हैं जुमे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने के, तो जुमे की रात और दिन बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें ताकि नूर कामिल हासिल हो। एक सबक के तौर पर अब यहाँ लेसन शुरू होता है जो नया मजमून है, किन किन जगहों पे और किन किन वक्तों पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। औकात दरूद शरीफ, यानी दरूद तो हर वक्त हर जगह पढ़ सकते हैं, बाज़ जगहों पर पढ़ना ज़्यादा अफजल है दरूद शरीफ और उसके फ़ायदे हैं। नमाज के आखिरी कादे में जब बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ का पढ़ना। आप नए मुसलमानों को देखिएगा तो नमाज याद करते हैं, वो कहते हैं फातिहा याद कर ली है और मैं इखलास भी याद करके लाया हूँ सूरह इखलास, और बस अभी अत्तहियात पे मेहनत हो रही है और ब्रदर वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद उस पर हो रही है अभी, यानी सीख रहे हैं। फिर वो ऐसे शौक़ से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप कभी उनको पढ़ते हैं, अरबी उनकी ज़बान नहीं है, स्क्रिप्ट वो समझ नहीं सकते, देख के नहीं समझ सकते, किसी तरह ट्रांसलिटरेशन से या किसी ने उनको ज़बानी सिखा दिया है कि ऐसे कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ऐसे अपनी ज़बान में जो उनका नेटिव होता है, हर जगह की एक ज़बान होती है टंग उनका प्रोनाउंसिएशन, वो पढ़ते हैं तो कितना उनको सवाब मिलता होगा। ये उनसे सीखने की बात है कि देखो कि नया मुसलमान को दरूद शरीफ याद कर रहा है, उसकी ज़बान नहीं है और फिर भी मेहनत कर रहा है। नमाज के आखिर में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, नमाज जनाजा में दूसरी तकबीर के बाद दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। जुमे में, जुमे से पहले और दूसरे खुतबे में, जुमे के दिन दो खुतबे होते हैं, उनमें दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, खतीब पढ़ते हैं। सामईन लोग दिल में पढ़ें और खुतबे के दौरान ज़बान से ना पढ़ें, जो मस्जिद में बैठे हैं वो ज़बान से ज़ोर से ना पढ़ें, दिल में पढ़ें। ईद के खुतबों में भी दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। जिस जगह बारिश नहीं होती हो और लोग बारिश की दुआ करने निकलते हैं, ईदगाह में जाके दुआ करते हैं, तो उसमें भी दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। पाँचों वक्त की नमाज के बाद दुआ से पहले भी दरूद पाक पढ़ना बेहतर है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त और बैठते वक्त दरूद शरीफ पढ़िए। मस्जिद में आ गए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, आते जाते हुए बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ते हुए दाखिल हुए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए निकले। दुआ के शुरू में, दरमियान में और ख़त्म पर दरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दुआ लटकी रहती है जब तक दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। हज के दौरान दरूद पाक का पढ़ना बहुत अफजल है और तवाफ विदा के बाद खाना काबा से निकलते वक्त भी दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी शरीफ में दाखिले के वक्त दरूद पढ़ना चाहिए। ज़ियारत रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दरूद शरीफ कसरत से होना चाहिए। शब जुमा, जुमे की पूरी रात दरूद पाक पढ़ना बहुत बेहतर है, सआदत मंदी की दलील है। जुमे की रात आदमी उठे, इतनी लंबी लंबी रातें हैं, 14 घंटे 15 घंटे कहाँ मिलेंगी, आधा घंटा 15 मिनट 5 मिनट दरूद शरीफ पढ़ा जाए, आम दिनों से ज़्यादा, एक तस्बीह दो तस्बीह तीन तस्बीह, उसमें क्या वक्त लगता है, आदमी टहलते हुए पढ़ लिया। हर रोज़ सुबह और शाम के वक्त दरूद पाक पढ़ना बहुत अच्छा है, 10 मरतबा पढ़ लें, 35 मरतबा पढ़ लें। एक साहब का अमल था, वो रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे, ज़िंदगी भर का मामूल, लाइफ टाइम। कैसे कहते, जब मस्जिद जाता हूँ आता हूँ 5 टाइम्स, जाते वक्त एक तस्बीह पढ़ लेता हूँ, वापस आते वक्त एक तस्बीह पढ़ लेता हूँ, दो हो गई 5 टाइम्स 1000, इसमें क्या मुश्किल है। घर से निकले दरूद पढ़ता हुआ चला जा रहा है मस्जिद, एक तस्बीह होगी, थोड़ा दूर से आते होंगे एक तस्बीह होगी। तो जो आदमी हिम्मत कर ले कि मुझे ये अपने जो वक्त हैं उनको आखरत के लिए कैश करके ले जाना है, तो ऐसा तरीका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते सुनते और लिखते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। किसी महफिल या इज्तिमा में शुरू से पहले दरूद शरीफ पढ़ने से बरकत होती है। किसी मजलिस से उठते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना बाइस इज्जत है। रात को सोते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना हिफाजत होगी। सोकर उठने के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना उम्र लंबी होगी। तो बुजुर्गों ने तजुर्बात जमा किए हैं, ये किताब है मकाम दरूद शरीफ, मौलाना मोहम्मद आमिर अब्दुल अजीज साहब, और इस पर शेख अब्दुल हफीज मक्की दामत बरकातहू, जो शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उन्होंने इस पर नोट लिखा है, इस किताब को पसंद फरमाया। नींद न आने की सूरत में दरूद शरीफ पढ़ना दिल के सुकून का बायस है। नींद उड़ गई, नींद नहीं आ रही, दरूद शरीफ पढ़ी। और एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौमी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौमी, अल्लाह मुझे नींद में बरकत दीजिए। कुरान शरीफ खत्म होने के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना बाइस सआदत है। दर्स और तालीम के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना इल्म में इजाफा होगा, दरूद शरीफ पढ़ लेना। और इस तरह के फजाइल हैं, अभी कोई तकरीबन 20-25-30 पढ़े, ऐसे ही और फजाइल हैं जो इंशाल्लाह अगली मजलिस में पढ़ेंगे। जब याद आ जाए, यानी दुनिया आखरत में दरूद शरीफ से ऊंचा अमल, फ़ायदा देने वाला दूसरे अमल नहीं है। आदमी तिलावत करे, जिक्र करे, दरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह की याद, दिल की सफाई होगी, डिप्रेशन ख़त्म होगा, अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, 10 रहमतें नाजिल होंगी, नेकियों की तौफीक होगी, सुन्नतों की तौफीक होगी, और क्या चाहिए, खुद ब खुद तौफीक होगी। एक दरूद शरीफ है, इसको मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सखरवी साहब ने अपने किताबचे में दर्ज किया है, परेशानियां दूर होने के लिए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी ताहिर ज़की सलातन तुहल्लु बिहिल उक़द व तुफक्कु बिहिल कुरब। तो जुमला तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अल उम्मी ताहिर ज़की सलातन तुहल्लु बिहिल उक़द व तुफक्कु बिहिल कुरब। दरूद शरीफ की कोई मुस्तनद किताब ले ली जाए और जुमे के दिन उसको चंद मिनट पढ़ लिया जाए, बाकी दिनों में भी सुबह शाम जब मौका मिले पढ़ लें। शेखुल इस्लाम अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आदमी दिन और रात में तीन तीन मर्तबा ये दरूद शरीफ पढ़े, वो ऐसा है कि गोया दिन रात में हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वले कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। ये फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह दरूद भेजिए, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हर बात के शुरू में और हर बात के दरमियान में और हर बात के आखिर में। ऐसे प्यारे प्यारे दरूद शरीफ लोगों ने जमा फरमाए हमारे फ़ायदे के लिए। आज एक बहुत अहम मज़मून पढ़ा जाएगा और उसमें फ़ायदे की बात होगी, आज के इस तालीम का अहम जुज है, वो ये है कि ज़िक्र की ज़रूरत क्यों है और ज़िक्र के फ़ायदे क्या हैं, और हमारे मशायख ने, बुज़ुर्गों ने आखिरी उम्र में और माजूरी के बीमारी के ज़माने में, जब आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, किस तरह ज़िक्र को फैलाने की कोशिश की कि दुनिया में ज़िक्र आम हो जाए। बहुत अहम मज़मून है, इसमें एक वाज़ है मुफ्ती रशीद अहमद साहब दामत बरकातहू, उसमें उन्होंने लिखा है कि तालीम, तबलीग और जिहाद, यानी दीन का कोई भी काम है उसके लिए कसरत ज़िक्र की ज़रूरत है। आप दीन का कोई काम करना चाहते हैं, कसरत ज़िक्र पहले सीखिए। उन्होंने उसमें कुरानी आयात से और सहाबा साबित किया, बहुत सारी मिसालें दी जिनको पढ़ा जाएगा। इनको असल में इसका एहतराम तो ये था कि बिल्कुल शुरू में हल्का इसी से शुरू होता, लेकिन चूंकि बाज़ लोग अभी आने में मशगूलियत होती है, इसलिए इसको दरमियान में रखा गया। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान पाक में जगह 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 मुतवज्जह करते हैं बंदे को जिक्र की तरफ। यानी एक तो मस्जिद आए, नमाज पढ़ी, जुमा पढ़ी, तो फरमा रहे हैं कि अब यहाँ से जाओ तब भी हमको याद रखना। सब काम हो गया, मस्जिद से जा रहे हैं काम पे, तो सूरह जुमा के आखिर में फरमाया, फ़ैज़ा क़ुज़ियत अस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ध वाबतगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वाज़कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब नमाज से फरागत हो जाए, नमाज ख़त्म हो गई, तो ज़मीन में चलो फिरो और रोज़ी तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। छुट्टी ली, 2 घंटे आए नमाज, वो ये कह रहे हैं वापस जाते वक्त भी और जाकर भी अल्लाह को कसरत से याद करो। नमाज से फारिग होकर दुनियावी कारोबार में मशगूल होने की हालत में भी जिक्र से गफलत ना होने पाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मफहूम हदीस का, तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, अल्लाह के जिक्र से जबान तर रहे। फिर फरमाया कि जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग मजनून कहने लगेंगे, इसको क्या हो गया हर वक्त सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हजरत ने फरमाया कि ये जिक्र और अशगाल शुरू में तो जहालत से नजात हासिल करने के लिए बतौर इलाज के जरूरी हैं, मगर जब बाद में इल्म आ गया, तकवा भी आ गया, खुशू भी आ गई, तो ये जिक्र खुद आदमी इतना उनमें मशगूल, इतनी उनमें उसको फायदे पाता है कि आशिक की तरह आदमी के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। अब जिक्र छूट नहीं सकता, आदत हो गई उसको जिक्र की, जिक्र की बदौलत उसको इल्म मिला, तकवा मिला, एहसान मिला, लेकिन उसके बाद जिक्र छोड़ के नहीं रखना। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं इन्नमा المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। ईमान वाले की सिफात बताई। अगली जगह फरमाया وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, आप गर्दन झुका देने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ऐसे हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया अल्लाहु नज़ल अहसन الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله। अल्लाह ताला ने बड़ा उम्दा कलाम नाजिल फरमाया जो ऐसी किताब है कि बाहम मिलती जुलती है, बार बार दोहराई गई है, जिससे उन लोगों के जो अपने रब से डरते हैं बदन कांप उठते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। हजरत ने उसमें कुछ आयात सजदा और उनके तर्जुमे लिखे हैं, तो आयात सजदा तो नहीं पढ़ रहे यहाँ, आप खुद देख सकते हैं उनका कैसे ज़बरदस्त उनके मफहूम है, उनका तर्जुमा कुछ का पढ़ा जाएगा। जिन लोगों को कुरान से पहले इल्म दिया गया, ये कुरान जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो थोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं, सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं हमारा रब पाक है, बेशक हमारे रब का वादा ज़रूर पूरा होता है, और थोड़ियों के बल गिरते हैं, रोते हैं, और कुरान उनका खुशू बढ़ा देता है। जब उनके सामने रहमान की आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदा करते हुए और रोते हुए गिर जाते थे। यानी कसरत जिक्र से और मुराकबात से उन पर ऐसी रिक्कत कल्ब तारी हो जाती है, ऐसी दिल की कैफियत कि अल्लाह जो कि उनके महबूब हैं, अपने महबूब की बातें सुन के उनके दिलों पर जलजला आने लगता है और दिल खून गर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाता है और इतने आंसू बहते हैं कि गोया आंखें ही बह गई। अल्लाह ताला महबूब हकीकी ने अपने आशिकों के मुराकबे, जिक्र, नमाज की कसरत और क़ियामुल लैल का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार फरमाया, किसी और के लिए नहीं फरमाया, हमारे लिए फरमाया, सीखो ये देखो हमारे महबूब बंदे ऐसे होते हैं। फरमाया यखाफूना यौमन ततकल्लबु फीहि अल-क़ुलूब वल-अबसार, वो ऐसे दिन से डरते रहते हैं जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी, यानी क़यामत की हौलनाकी को सोचते हैं। وَيُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, वो जो कुछ देते हैं, जो देते हैं उनके दिल इस खौफ से डरते रहते हैं कि अपने रब के पास जाने वाले। وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, वो लोग रातों को अपने रब के आगे सजदा और क़याम में लगे हुए होते हैं। كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, वो लोग रात को बहुत कम सोते थे और आखिर शब में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो फरमाया कि अरबी के कवायद के मुताबिक इतनी ताकीद है इसके अंदर, ताकीद ही ताकीद, और इतनी शान से क़यामुल लैल का तज़किरा फरमाया कि रात को बहुत कम सोते हैं, जब रात ख़त्म होने वाली होती है तो रात भर की इबादत का हिसाब लेते हैं और यूं समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सके, सो सुबह को इस्तिग़फ़ार इस बात पर करते हैं कि हम रात को ठीक से इबादत नहीं कर सके। इन्होंने किसी का शेर लिखा है कि आशिक अपनी जान का नजराना पेश करके भी अपने आप को कसूरवार समझते हैं। जान दी दी हुई उसी की थी, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़करुल्लाह कसीरा, उन्होंने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया। सूरह आल इमरान में आखिरी रुकू है, अगर कोई पढ़ ले दो सफ़े हैं तो रात भर उसको क़ियामुल लैल का सवाब मिलेगा। उसमें फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े भी बैठे भी लेटे भी, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन के पैदा होने में गौर करते हैं। साइंसदान भी जब साइंस से पहुँचता है तो पुकार उठता है। किसी ने तहकीक पेश की कि आदमी को एक सांस लेने के लिए जो एयर में उसको चाहिए ऑक्सीजन और बाकी क्या होती है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक ख़ास प्रोपोर्शन चाहिए, परसेंटेज। दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो परसेंटेज चाहिए तब सांस ले सकता है, वरना सांस बंद हो गई आदमी ख़त्म हो गया। अब वो परसेंटेज जो है वो एयर में कहाँ से आता है, उसके लिए ये एटमॉस्फेयर है, उसके लिए ये बारिश है, उसमें क्लाउड है, उसमें सनलाइट है, उसमें ये दरख्त हैं, उसके अंदर ज़मीन है। एक बताया तहकीक की उन्होंने कि छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो उसमें मदद करते हैं कि ये प्रोपोर्शन रहे, वरना ऐसी जगह चले जाओ कि वो नहीं हो तो एक मिनट में आदमी ख़त्म। तो कायनात की पैदाइश में गौर करो, हजरत इंसान खा रहा है सो रहा है, अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है, पाल रहे हैं उसको, वरना एक मिनट जिंदा नहीं रह सकता। तो एक सांस ले और एक सांस निकाले अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आँख बंद की एक आँख खोली अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा दिल धड़का अल्लाह का शुक्र करें। आदमी का दिल धड़कता है कोई 70-72 मरतबा, 70-72 टाइम्स, ठीक है। अब कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाओ तो रोज़ाना 1,00,000 मरतबा धड़कता है, 100,000 टाइम्स और ज़्यादा। और कब से ये काम कर रहा है, जब से अपने माँ के पेट में थे उस वक्त से दिल धड़कना शुरू हुआ और एक मिनट को भी नहीं रुकता, अगर ज़रा सा रुक जाए तो सिलसिला ख़त्म। तो आदमी अल्लाह का शुक्र करे हर दिल धड़कने के वक्त, हर सांस लेने के वक्त और हर आँख झपकने के वक्त, हर वक्त आदमी अल्लाह के। लेकिन इतने शुक्र की अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं डाली कि हर वक्त आदमी ने कहा अच्छा जाओ काम पे भी जाओ, खाना भी खाओ, सो भी सुबह शाम में और 5 वक्त नमाज में मस्जिद आ जाया करो, कुछ वक्त याद कर लिया करो। और फिर तरगीब दी कि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, हमारे ख़ास बंदों में शामिल हो जाओ, ख़ास बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकी मोमिन की अलामत, अमन हुवा क़ानितुन आना अल्लैल साजिदा व क़ाइमा यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बिह قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب। भला वो आदमी जो रात के वक्त में सजदा और क़याम की हालत में इबादत कर रहा हो और आखरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद कर रहा हो, आप कहिए क्या इल्म वाले और जहालत वाले बराबर होते हैं? वही लोग नसीहत पकड़ते हैं जो अक़ल वाले हैं। यह फरमाते हैं कि इस आयत में अहले इल्म, इल्म वाले उनको कहा गया है जो रात में खुशू और खुदू और खौफ और उम्मीद की हालत में कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं, उन लोगों को कहा गया कि ये अकल वाले इल्म वाले। अल्लाह एक जगह कुरान शरीफ में फरमाया हमारी आयतों पर सिर्फ वो लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वो आयतें याद दिलाई जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की तस्बीह और तहमीद करने लगते हैं। वो लोग तकब्बुर नहीं करते, उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं इस तौर पर कि अपने रब को उम्मीद और खौफ से पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों में खर्च करते हैं। इसमें इस तरह बहुत सारी आयात अहादीस बयान फरमाई। फिर फरमा रहे हैं कि एक होता है जाबते का मुसलमान, यहाँ भाई मुसलमान है, और एक होता है असल असल मुसलमान राबते का। तो असल मुसलमान वो है जो कि फराइज और खुशू व खुजू व कसरत ज़िक्र और क़ियामुल लैल को अदा करेगा। और समरी ये है कि जब तक ये ज़िक्र मुराक़बा मुहासबा खुशू कसरत ज़िक्र क़ियामुल लैल नहीं होगा उस वक्त तक आलिम और इल्म वाला कहना तो क्या सही मानों में मुसलमान भी नहीं कहलाएगा। ये सब चीज़ें प्री रिक्विजिट बता दें, क्योंकि इतनी आयात हैं बता रही हैं कि ये चीज़ चाहिए मतलूब है। ہر ایک سے چاہیے. پھر اس کے بعد انہیں فرمایا کہ جو لوگ یعنی صرف کتابیں پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھ لی, اسٹڈی کر لی, اور اس طرف متوجہ نہیں ہوئے اس بات کی طرف, تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علوم سے لاکھوں کمالات رکھتا ہے لیکن ظالم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. علوم سے لاکھوں کمالات رکھتا ہے لیکن ظالم اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. سارے علوم اور نالج ان کی روح جو اصل بات ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ قیامت کے دن آپ کی کیا حالت ہوگی. ہر علم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھ معلوم کر لو کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا چیز پیش آنے والی. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وسوسہ ہے. اب انہوں نے مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنا فرماتے تھے, کمر باندھ لیتے, احیاء اللیل فرماتے, پاؤں میں ورم آ جاتا, کثرت سے نفلی روزے رکھتے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیوں نہ فرمایا کہ یہ والا وقت بھی نوافل کے بجائے تبلیغ میں اور حکومت اور نظم و اقامت میں صرف کرنا چاہیے. اتنے بڑے مفتی ہیں مفتی رشید احمد صاحب, انہوں نے علماء کرام کے لیے یہ کتاب لکھی تھی. کسی عالم نے ان سے کوئی بات پوچھی تھی, اس کے جواب میں انہوں نے رسالہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کثرت نوافل اور یہ ساری رات کی عبادت چھوڑ کے اس وقت تبلیغ کا کام کرتے, اس وقت بھی حکومت کا کوئی اور کام کرتے, مشورے کرتے, کچھ اور کرتے. نہیں, وہ کام چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہم اور آپ ایک دن کر کے دکھا دیں, جاگ تو لوگے لیکن وضو رہے گا کہ نہیں پتہ. تو ایسے لوگ محنت کیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں ایک پڑوسی کوئی بچی نے دیکھا کہ اگلی درواز اگلا جو مکان ہے اس کی چھت کے اوپر ایک پلر ہے, ایک اندھیرے میں ایک پلر نظر آیا کرتا تھا. مہینوں گزر گئے, دیکھا کہ پلر ہے نہیں, ٹوٹ گیا. پوچھا اب کیا ہوا, انہیں کہا وہ پلر نہیں تھا, وہ تو بزرگ تھے, رات کو چھت پہ عبادت کیا کرتے تھے, اب انتقال ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پاک روزانہ ختم فرماتے تھے, ایک قرآن پاک روزانہ ختم فرماتے تھے. ان چیزوں سے علم میں, فقہ میں, مسائل میں, فتاوا میں جان پڑتی ہے. یعنی کہ وہ وقت بھی چھوڑ دیا, اس وقت میں بھی فتاوا لکھ رہے ہیں کہ آؤ بھائی مشورہ کریں. اس کا کام الگ ہے, اس کا کام الگ ہے. فقہ حنفی کی بنیاد جو ہے, جو فقہ حنفی کروڑوں لوگ دنیا میں اس پہ مسائل, فتویٰ, حلال حرام, سارے علماء کرام اس میں فتویٰ دیتے ہیں, اس کی جو مین کتاب ہے اصل فقہ حنفی کی ہدایہ, ہدایہ کی کتاب آپ دیکھنا. علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی کتاب لکھی. کس طرح لکھی, 13 سال تک یہ کتاب کمپائل کرتے رہے اور 13 سال تک روزانہ روزہ رکھے انہوں نے. یعنی جن دنوں میں ممنوع ہوتا ہے 4-5 دن ان کو چھوڑ کر, رمضان بھی نہیں, 13 سال تک مسلسل روزہ رکھا صبح سے شام. وہ آدمی کھانا لے کے آتا ہو کہ کھانا لے آؤ, پھر اس کو چپکے سے کسی اور کو کھلا دیتے, اپنا کام کرتے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ روزہ رکھا. تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سے محنت کی ہے اور دین کی اور یہ یعنی ذکر کی اور جو اللہ سے تعلق ہے وہ عام ہو جائے. اب اس کے بعد اس میں کچھ احادیث شریف پیش کی جاتی ہیں مجالس ذکر. یہ حضرت شیخ محمد اقبال صاحب نے کمپائل کیا اور اس میں ڈاکٹر اسماعیل مدنی صاحب دامت برکاتہم ان کا بھی نام ہے, اور اس میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ اس طرح انہوں نے ذکر کو پھیلانے کی محنت کی. پہلے اس میں کچھ احادیث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کچھ صاف کرنے والی, چمکانے والی چیز ہوتی ہے. دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. اخلاص دلوں کی صفائی پر ہے اور اخلاص کے بغیر کوئی عبادت عبادت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کوئی عمل بندے کو اس قدر اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا جس قدر اللہ کی یاد بچاتی ہے. ذکر ترمذی شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب بندے کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں, لپس موونگ. اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. بخاری شریف میں مضمون ہے. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुमको ऐसी चीज ना बताऊं जो तमाम आमाल में बेहतरीन चीज है, तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे ज्यादा पाकीजा, तुम्हारे दर्जों को बहुत बुलंद करने वाली, सोने चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी बेहतर है, और तुम दुश्मनों को कत्ल करो जिहाद में, वो तुमको कत्ल करें उससे भी ज्यादा बड़ी हुई है। सहाबा ने अर्ज किया, जरूर बताएं। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र है जो उन सब चीजों से अफजल और आला है। अल्लाह फरमाया कि जिसने अल्लाह का जिक्र बहुत किया वो निफाक से बरी हो गया, वो हिपोक्रेट नहीं कहलाएगा, हिपोक्रेसी से उसको वो अलग हो गया। फरमाया जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है, कि जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र नहीं करने वाला लाइक डेड। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम शरीयत के, इस्लाम के बहुत सारे हैं, मुझे ऐसी एक चीज बता दें जिसको मैं अपना दस्तूर और मशगला बना लूं, ये बाकी काम तो अपने अपने वक्त पर करता हूँ, एक चीज मुझे बता दें जो हमेशा के लिए बांध लूं उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से हर वक्त रतबुल लिसान रहे, आपकी जबान तर रहे अल्लाह के जिक्र। मुआज़ रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जुदाई के वक्त, जब आखिरी मरतबा वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, अब जा रहे थे अल्लाह के रास्ते में दीन फैलाने, तो आखिरी जो बात हुई, उन्होंने पूछा कि सब आमाल में महबूब तरीन अमल अल्लाह के नज़दीक क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हाल में तुम्हारी मौत आए कि अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान हो, तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा मामला करता हूँ जैसा मेरे साथ गुमान रखता है, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, जो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ, अगर वो मेरा किसी मजमे में, ग्रुप में, किसी गैदरिंग में जिक्र करता है तो मैं उस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ, उसको याद करता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त मुतवज्जा हो तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में इस तरह का मतलब, जितना हम अल्लाह को याद करेंगे अल्लाह पाक उससे ज्यादा याद फरमाएंगे, रहमत से, बख्शिश से, अता से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझको मेराज कराई गई, आसमानों की सैर को तशरीफ ले गए, तो एक ऐसे आदमी पर गुजर हुआ जो अर्श के नूर में छुपा हुआ था, अर्श के नूर में छुपा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेराज की रात को देखा, उसको देखकर पूछा कि क्या ये फरिश्ता है, जवाब दिया गया कि नहीं फरिश्ता नहीं है ये, फिर पूछा कि क्या ये नबी है, जवाब दिया गया नहीं नबी भी नहीं है, ये तो एक आदमी है जिसकी जबान अल्लाह के जिक्र से दुनिया में तर रहती थी और दिल उसका मस्जिदों में लगा रहता था। इब्ने अबी दुनिया वहां से रवायत है और मुफ्ती आशिक इलाही साहब ने भी इसको जिक्र फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर रात और हर दिन अल्लाह की तरफ से एक खास सदका होता है, और जिस बंदे के साथ एहसान करना चाहते हैं सदका देकर अल्लाह पाक उस पर एहसान फरमाते हैं, और किसी बंदे पर इससे बढ़कर अल्लाह का एहसान नहीं है कि वो अपनी याद उसके दिल में डाल दे। सबसे बड़ा सदका, एहसान, तौफीक कि अल्लाह की तरफ से जबान खुल जाए, दिल अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत हो गई उस बंदे। फरमाया कि एक आदमी की गोद में रुपए रखे हुए हैं, पैसे उनको बांट रहा है, सदकात फकीरों को दे रहा है, पैसे निकाल निकाल कर दे रहा है, और एक आदमी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो जिक्र करने वाला ही अफजल रहेगा। फरमाया कि शैतान इंसान के दिल पर घुटने रखकर बैठा हुआ है, शैतान ऐसा दौड़ता है रगों में, खून के अंदर दौड़ता है, दिल पर घुटने रखकर बैठा हुआ है, जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान हट जाता है, और जब जिक्र से गाफिल हो जाता है तो वसवसे डालने लगते, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फला का क्या होगा, जहाँ जिक्र को भूला अब शैतान ने उसमें सारे टू डू लिस्ट उसने चलानी शुरू कर दी, तो सारे कॉइन्स जो थे आखिरत की तैयारी के वो ज़ाया हो गए, फिर उसी पर डिबेट, किसी से पूछा, कन्फ्यूज, प्रॉब्लम, क्योंकि अपने मकसद से हट गया, अब उसको शैतान उसको लूप में डाल रहा है। जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं वो समझ लो कि एक गार्बेज एक लूप में डाल दिया, बस उसमें कुछ कर नहीं रहा, तो ऐसे ही हम अपने जो है दिन भर के औकात उसमें जाया करते रहे। एक आदमी ने सवाल किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से मुजाहिद का अजर बहुत ज्यादा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उनमें से अल्लाह को बहुत याद करता हो। फिर उन्होंने पूछा कि सालिहीन में किसका बड़ा अजर है, आपने फरमाया जो अल्लाह को बहुत याद करता हो। फिर उन साहब ने पूछा कि नमाजियों में कौन किसका सबसे ज़्यादा अजर है, रोज़ा देने वाले, ज़कात वालों में, हाजियों में, सदक़े वालों में सबसे अफजल कौन है। यही जवाब मिला कि जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करता। ये सवाल और जवाब सुनकर अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने उमर रदी अल्लाह अन्हु को खताब करके फरमाया कि ए अबू हफ्स, जिक्र करने वाले हर भलाई ले उड़े। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ। एक हदीस शरीफ में फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान को किस तरह ताज़ा करें, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा। एक जगह फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कसरत से करते रहा करो कबल इसके कि ऐसा वक्त आए कि तुम उस कलमे को नहीं कह सको। जो आदमी 100 मरतबा तस्बीह पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह की, क़यामत में ऐसा आएगा उसका चेहरा चांद की पूरे फुल मून की तरह चमकता हुआ होगा। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे कोई विरद, कोई वजीफ़ा, कोई जिक्र तालीम फरमा दीजिए जिससे मैं आपको याद किया करूं और आपको पुकारा करूं। अल्लाह का इरशाद हुआ कि ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उन्होंने कहा परवरदिगार ये तो सारी दुनिया ही कहती है। इरशाद हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह मैं तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ मांगता हूँ जो सिर्फ मुझी को मिले। इरशाद हुआ कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में, तराजू के एक तरफ स्केल में रख दी जाएं और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला झुक जाएगा। अल्लाह के नाम के बराबर कोई भी चीज़ वजनी नहीं, और अल्लाह का नाम कोई गफलत से भी ले लेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। मजमून कई दफ़ा सुनाया कि हिंदुस्तान में एक आदमी 99 साल अपने बुत की पूजा करता रहता था और उसको पुकारता रहता था सनम सनम सनम। एक दिन गलती से जबान फिसल गई और अल्लाह का नाम निकल गया समद। उसको जवाब आ गया मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, क्या चाहिए। उसने उठ के अपने कुल्हाड़ी से बुत को तोड़ दिया कि 99 90 साल से मैं अपने बुत को पुकार रहा था, एक दफ़ा भी जवाब नहीं दिया, एक दफ़ा गलती से मुसलमानों के खुदा का नाम निकल गया, फौरन जवाब आ गया। अल्लाह पाक का नाम गफलत से भी लेंगे तो उसमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अब यहाँ पर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल आखिरी ज़माने का जिक्र है, जब उमर शरीफ 80-84 साल की हो गई थी, मंजूर हो गए थे। इसमें एक सबक है, जब बार दफ़ा बीमारी होती है, परेशानी होती है तो आदमी समझता है कि अब मैं क्या करूँ दीन का काम, तो यहाँ से सबक सीखने का है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत थी कि वो बिला ज़रूरत खर्च नहीं करते और अपने आराम के कामों में भी बहुत तंगी करते, एक एक पैसे की कदर फरमाते थे और ऐसी कदर जैसे हम लोग हज़ारों रुपए की भी नहीं करते। लेकिन जब जिक्र की मजालिस कायम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में सफ़र हुए आखिरी ज़माने में, तो हज़रत ने, बहुत से लोगों ने कहा कि हज़रत सफ़र का किराया और टिकट और सारा खर्च हम देंगे। लेकिन हज़रत ने कहा कि नहीं, पहले ही तय हुआ कि सारा टिकट और सफ़र का खर्च हम किसी से नहीं लेंगे, अपने पास से देंगे। इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, खर्च हम अपने पास से देंगे। फिर ये शर्त थी कि इस पूरे सफ़र में हम कहीं भी कोई हदिया किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई आदमी कुछ ना दे और मुझे भी ना दे और मेरे जो खादिमीन जो साथ में सफ़र कर रहे हैं इनको भी कोई चीज़ ना दी जाए। इस शर्त पर सफ़र तय हुआ। हज़रत के यहाँ सहारनपुर में ज़ाकिरीन का इज्तम होता था, उसके मुतालिक लिखा कि सस्ते ज़माने में, जब बहुत सस्ता ज़माना था, मेहमान आए, ज़िक्र की मजलिसें और जो खानकाह की तरतीब होती है, तो अखराजात हुए उनके ऊपर, तो अखराजात के मुंतज़िम जो आदमी मुकर्रर था ज़िम्मेदार, उसने हज़रत को फरमाया कि हज़रत 40,000 खर्च हो गए, 40,000 खर्च हो गए। उस पहले ज़माने की बात हो रही, और किसी ने आके ताज्जुब किया कि 40,000 खर्च हो गए। हज़रत ने फरमाया कि अगर ज़ाकिरीन के इस मजमे में किसी आदमी के मुंह से एक दफ़ा भी इखलास से अल्लाह का नाम निकल गया होगा तो मेरा सारा खर्च वसूल होगा। कोई बात, जो आदमी अपने खर्च में एक एक पैसा और एक एक रुपए की कदर गिन गिन के उसको खर्च एहतियात से करते हैं, जब जिक्र फैलाने का मौका आया तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक आदमी के मुँह से अल्लाह का नाम अगर निकल गया इखलास से तो मेरा खर्च वसूल हो गया। उसके बाद जब महंगाई का जमाना आया तो सिर्फ एक रमजान शरीफ में 2.25 लाख से ऊपर खर्च हुआ, उस जमाने की बात है। फिर जब हजरत सफर पर गए तो उन्होंने अपनी माजूरी की के जमाने में अपने और अपने 4 खादिमों का किराया टिकट अपनी जेब से अदा किया, जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए का बनता था। 3 लाख रुपए टिकट और खर्च, तो ये खर्च करके गए। अच्छा, अब लिखते हैं कि हजरत को अपनी यानी जवानी के जमाने में ही सफर करने में मुश्किल होती थी। मौलाना अली मियां फरमाते हैं कि शेख को सफर से एक वहशत सी थी, अदम मुनासिबत। उनके लिए सहारनपुर से दिल्ली जाना तो बड़ी चीज थी, रायपुर और देवबंद जाना भी एक मुजाहिदा अजीम था, यानी मुश्किल काम था। बहुत दफा ऐसा हुआ कि सफर के इरादे से उनको बुखार आ गया, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने, और वापसी पर कई कई दिन तक सेहत पर असर रहा। और इंग्लैंड में मौलाना अतीकुर रहमान, उन्होंने फरमाया कि हजरत के उम्र के 84 साल 84 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, बरसा बरस की बीमारी की वजह से उन चल फिर नहीं सकते बिस्तर पर, हर छोटी से छोटी ज़रूरत उनकी उन खादिमों के ज़रिए पूरी होती है। खुद से करवट लेना और उठकर बैठ जाना उसका तो कोई जिक्र ही नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं। अपने हाथ से चाय की प्याली भी नहीं उठा सकते थे, दूसरा ही पिलाता था, और खाने का निवाला और दवा का चमचा भी दूसरा आदमी उनके मुंह में डालता था। हम अपना जायजा लें, कितनी भी उम्र हो गई, कितनी भी बीमारी हो गई, क्या ये हालत हो गई? इस हालत में थे शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, 84 साल के, हाथ भी नहीं उठा सकते, चाय की प्याली नहीं उठा सकते, करवट नहीं बदल सकते। एक आदमी यानी मुंह में खाने का निवाला डालता, दवा का चमचा भी दूसरा आदमी डालता, वजू करने के लिए कई खादिमों की जरूरत होती, हीटर रखकर सामने कुर्सी पर बैठाकर एक खादिम तश्त पकड़ता, कोई बर्तन है, एक खादिम तश्त पकड़कर खड़ा हुआ है, दूसरा हजरत का हाथ पकड़कर आगे लाता है, और तीस और पानी डालता है ऊपर से, और तीसरा जल्दी से तौलिए से फिर उसको पोछ लेता है। ये वजू कराया जा रहा है, वजू कराया जा रहा है, 4 आदमी उसके लिए चाहिए होते, और मिसवाक भी दूसरा आदमी अपने हाथ से कराता, यहाँ तक के बलगम वगैरह भी खादिम अपनी उंगली से निकालता। सर में दर्द है, बुखार है, बेखाबी है, नींद नहीं आती, बहुत सारी तकलीफें हैं, 84 साल की उम्र है, इस हालत में खुली करामत और इस्तेकामत ये थी कि दिल और दिमाग हाजिर, और हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र, डाक के जवाबात लिखवा रहे हैं, पेचीदा मसाइल का हल लिखवा रहे हैं, और अपने खादिमों के ज़रिए किताबें लिखवा रहे हैं, और हर आने जाने वाले मेहमानों लोगों की निगरानी और फिक्र और तहज्जुद की नमाज और मुराकबा और जिक्र और तमाम इबादात का एहतमाम ऐसा था कि हैरत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। हजरत ने उस ज़माने में जो खतूत लिखे हैं, लेटर्स, वो छपे भी हैं कि उनको पढ़ा जाए। इस हालत में आदमी ने दीन का काम किया। फिर क्या हुआ कि इस हालत में मदीने शरीफ से लंदन जाना, उसके आगे बरी जाना, फिर वापसी पर इंडिया जाना, हर आदमी की समझ से बाला तर था कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक आदमी जो है इमरजेंसी में है वो ऐसा सफ़र कर सकता है। साफ जाहिर था कि अपने मौत को मुंह में डालना है, अपने यानी मौत के मुंह में खुद को डालना है, लेकिन हजरत के सामने किसी को कहने की कुछ जुरत नहीं थी। एक साहब ने सुना कि शेख ज़करिया इंग्लैंड आ रहे हैं, तो उनको यकीन नहीं आया, 100% अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंग्लैंड गए, बखैरियत वापस आए, फिर अगले साल फैसलाबाद गए, इंडिया गए, साउथ अफ्रीका गए, जैम्बिया गए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, क्या चीज़ छोड़कर गए, हजरत कहाँ थे, ये सब जिक्र की अहमियत बताने के लिए रिसाला है कि हजरत क्या चीज़ छोड़कर सफ़र पर गए। हजरत मस्जिद नबी शरीफ के बराबर में रहते थे, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद दूर भी नहीं, मस्जिद नबी शरीफ से मिला हुआ उनका कमरा था। कुल हदीस से हके साल हर साल में वहाँ दर्श दिया है, हदीसें पढ़ाई हैं, बहुत बड़े अरबों में इमाम समझे जाते हैं शेख ज़करिया रहमतुल्लाह, और हर किस्म के राहत आराम का इंतज़ाम था। हरमैन शरीफ़ैन में रमज़ान था, और रमज़ान में उम्रे करने के फजाइल, रोज़े के फजाइल, 1 लाख गुना नमाज का सवाब, मस्जिद नबी में इतकाफ़, और सबसे बढ़कर एक आशिक़ सादिक़ के लिए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फैज़ याब होना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की ज्यारत जो है वो हो रही है, रोज़ा मुबारक की सुबह शाम सलाम पेश हो रहा है, यहाँ छोड़ के कहाँ जाना, वहाँ पर मुस्तकिल मिल गया उनको। हजरत ने इन सब बातों को फजाइल हज और फजाइल दरूद में खुद लिखा और फिर भी इन सारी चीज़ों को इस हालत में, बीमारी में, बुढ़ापे में कुर्बान किया, इसलिए कि दुनिया में जिक्र आम हो जाए, दुनिया में जिक्र के हलके लग जाए। और सबसे बढ़कर ये बात थी कि मदीने पाक में मरने की आरजू और उस उम्मीद को भी खतरे में डाल दिया, कहीं बाहर जाऊं इंतकाल हो गया तो अब फिर यहाँ कहाँ दफन होगा, मदीने शरीफ में जो दफन होगा उसकी शिफायत की जाएगी, उसके फजाइल हैं। तो बहुत सारे अकाबरीन बुजुर्ग आखिरी जमाने में वहाँ जाते हैं, वहाँ से निकलते नहीं हैं, क्या पता आखिरी वक्त आ जाए, उन्होंने उसको भी कुर्बान कर दिया कि चलो जिक्र को फैलाओ। तो हुआ ये कि जब उन्होंने ये सफ़र फरमाए और जिक्र फैलाने की मेहनत की तो उसके बाद हजरत ने लिखा कि सब कुछ कर लेने के बाद शेख हजरत शेख या करीम पुकारते हुए अल्लाह ताला की तरफ, और अल्लाह ताला ने भी अपनी शायान शान ऐसे पूरा फरमाया कि मदीने शरीफ में अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा के कब्र मुबारक के करीब उनके कदमों में हजरत के शेख मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, उनकी कब्र मुबारक के करीब शेख जकरिया का पुरनूर मज़ार बना और उसी जगह की उनको आरज़ू थी। तो आदमी दीन की मेहनत करता है, अल्लाह पाक ज़ाय नहीं फरमाता, सबक है हम सबके लिए। कितनी ही परेशानी हो जाए, इससे ज़्यादा कोई परेशानी होगी, इसमें पूरी दुनिया का सफ़र किया और जा जा के कि जिक्र के हल्के आम हो जाएँ, दुनिया में जिक्र फैल जाए। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें दीन की बात समझने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नतों को और दीन के अल्लाह पाक के तरीक़े अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। एक दो मज़मून कुछ वाक़यात पढ़कर फरमाया जाएगा कि सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक आदमी की बड़ी शोहरत सुनी, ये आदमी कोई अल्लाह वाला है, कोई नेक आदमी है, तो मुलाकात को तशरीफ़ ले गए। बायजीद बुस्तामी शेख एक आदमी की शोहरत सुनी कि बहुत नेक आदमी है, तो मुलाकात को तशरीफ़ ले गए और इंतज़ार में मस्जिद में बैठे रहे। वो आदमी अपने हुजरे से बाहर निकला और उसने छींक ले के, यानी नाक कर ले के से कुछ लेकर गंदगी मस्जिद की दीवार पर पहुँच दी, कुछ ऐसा मामला किया। शेख बायजीद ये हालत देखकर मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। लोगों ने सवाल किया, ऐसा क्यों? आपने फरमाया, मैंने इस आदमी की शोहरत सुनी थी, मैंने देखा कि ये आदमी आदाब शरीयत से ही वाकिफ नहीं है, सुन्नत भी नहीं जानता, तो इसके पास क्या चीज़ होगी? अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अपने असरार का राजदार नहीं बनाता जो उसके शरीयत के आदाब की हिफाजत नहीं कर सकता। यानी कोई आदमी में देखें कि बहुत सारे कमालात हैं लेकिन कोई सुन्नत छूटी हुई है, तो आदमी समझ ले कि ये आदमी अल्लाह के करीब नहीं है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत इलाही का कोई रास्ता नहीं सवाए इसके कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए। सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई हादी और रहबर नहीं, तक्वा से बेहतर कोई तोशा आखरत नहीं और सब्र से बढ़कर कोई अमल खैर नहीं। अल्लाह, माजी में यानी पास्ट में ऐसा था कि इंडिया में जोगियों का असर था, शोबदाबाजी, लोगों को अपने जाल में फांस लेते थे, कमालात दिखा दिए, कोई करामत दिखा दी, लोग समझे कि कुछ पहुंचा हुआ है उसके। तो हमारे मशायख ने जब तशरीफ लाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने जोगियों के कमालात को अपनी सच्ची रूहानियत के ज़रिए शिकस्त दी और सरजमीन हिंद पर तौहीद का परचम बुलंद किया। उन्होंने उनको बताया कि असल कमालात, करामात, सुन्नत तरीक़े वो ये होते। एक सफ़र किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इंडिया में, एक सफ़र किया, ना कोई बुक्स है, ना लाइब्रेरी है, ना कोई चीज़ है, ना बहुत सारे लोग हैं, चीज़ें हैं, उनके एक सफ़र में कितने हज़ारों हज़ार लोग लाख इस्लाम में दाखिल। दीन ऐसे फैले, अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत फरमाते हैं तो लोग उसकी तरफ चले आते। हमारे बुजुर्गों ने यानी दीन क्यों फैलाया और आज के ज़माने में एहतियात की ज़रूरत है कि आदमी सिर्फ कोई शोबदेबाजी या कोई चीज़ देखकर कहीं ना फंस जाए, बल्कि असल उलमा की तलाश में, असल उलमा की तलाश में रहे, बुज़ुर्गों की, और जहाँ अल्लाह वाले हों उनके पास। एक आदमी ने शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह से कीमिया का इल्म हासिल करने की दरख्वास्त की, यानी एक ऐसी चीज़ सिखा दे मुझे, कोई वजीफा कोई चीज़, कि हर चीज़ को मैं सोना बना लिया करूँ, गोल्ड, उससे काम चला लिया करूँ। शेख के पास आया, पहले ज़माने में लोग ये चीज़ें ढूंढते थे। शेख ने कहा ठीक है, तुमको सिखा देंगे, तो 1 साल तक हमारी खिदमत में रहो, 1 साल तक हमारे पास रहो, और शर्त यह है कि जब तुम्हारा वजू टूट जाए तो वजू करो जाके, और उससे 2 रिकत पढ़ा करो। तुम्हारा वजीफा यह है 1 साल तक कि वजू में रहो हर वक्त, वजू टूट जाए तो जाके 2 रिकत पढ़ा करो, वजू करो 2 रिकत पढ़ा। उस आदमी ने ऐसा ही किया। 1 साल जब गुजर गए, वक्त पूरा हो गया, अब वो कुएं पे जाता था पानी लेने के लिए, तो पानी लेने के लिए कुएं पर गया और उसने अपना डोल डाला, तो क्या देखता है कि डोल के अंदर पानी के बजाय सोना चांदी भरा हुआ, पानी सोना हो गया। लेकिन उस आदमी में अब दुनिया से बेरग़बती पैदा हो चुकी थी, उसको समझ में आ गया था दुनिया और आखिरत की हकीकत। उसने सोना चांदी वहीं उलट दी और जाके शेख को इत्तला दी कि ये ऐसा हो गया था, मगर मुझे तो अब नहीं चाहिए। शेख ने कहा अब तुम सुबह और सर से पैर तक खुद गोल्डन हो गए हो, उसको खिलाफत से नवाजा, रुख्सत कर दिया जाओ, दीन की मेहनत करो, दीन की मेहनत करो। 1 साल में उसको बात समझ में आ गई। अल्लाह पाक हमें दीन की मेहनत में और जिक्र में लगने की तौफीक अता फरमाए। किसी पर एतराज़ नहीं करना, अपने काम में लगा रहना, और अल्लाह से खूब डरना, खूब डरना। क़यामत में 2 लाइनें होंगी, एक बुजुर्ग फरमाते हैं फ़र्ज़ करो क़यामत में 2 लाइनें लगे जाएँ, ऐ लोगों 2 लाइनें बनाओ। 1 लाइन में लोग कुछ दीन का काम करने वाले थे, नेक अमल, अमल साले, इबादत, खिदमत, जिक्र, तस्बीह, तिलावत, तबलीग, कुछ काम करने वाले थे, इधर खड़े हो जाओ। और 1 लाइन उनकी है जो कुछ करने वाले नहीं थे, एतराज़, तनकीद, गीबत, ऐब जोई, दूसरे को बुरा भला कहना, तुम लोग दूसरी लाइन में खड़े हो। तो शेख पूछते हैं कि आप किस लाइन में बोलना पसंद करेंगे, आप किस ग्रुप में आपका हशर हो आप पसंद करें। 2 आँखें हैं, एक से दूसरे लोगों की खूबियाँ देखें और दूसरी आँख से अपनी खराबियों का हिसाब लगाएं। मेरा अकीदा ठीक है कि नहीं, मेरी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज में कमी तो नहीं, नामा अमाल में कोई गुनाह तो नहीं है, मेरे हुकूक फ़राइज़ में कोई चीज़ कम तो नहीं है। दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें, अपने लिए सोचें कि पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा। तो अल्लाह पाक हमें ऐसा करने की, सोचने की तौफीक अता फरमा दे। दरूद शरीफ पढ़ के और आदमी तौबा की नीयत कर ले, और तौबा के मसाइल और चीज़ें ये पूछा करे। उलमाए कराम से कोई चीज़ पूछना है, भाई तौबा मैं कैसे कर लूँ, ये गलती है, ये टिकट है मेरे अकाउंट में, कैसे ये साफ़ होगी। तौबा को बहुत आसान रखा गया और तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रखा गया। मौत तक आदमी के लिए मोहलत है, सुबह के भटके हुए शाम को आ जाओ और रात के नाफरमान सुबह को आ जाओ। पहाड़ों के बराबर गुनाह अल्लाह की रहमत के मुकाबले में कुछ वज़न नहीं रखते। जब आदमी को तौफीक हो जाए, समझ में आ जाए ज़िंदगी का मकसद, पहला काम ये करे कि मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। होता है तो फिर बड़े बड़े डाकू आके तौबा करते हैं कि मुझे तौबा करनी है, अभी तौबा कर लो। मशायर बुजुर्गान उनको भी तौबा करा देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, वालदैन, पूरी उम्मत, पास पड़ोस, सब लोगों के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह दीन की समझ अता फरमा दे, अल्लाह पाक सबको दीन के काम में कबूल फरमा दे। यहाँ दुआएं तालीम के वास्ते पढ़ी जाती हैं, इस दौरान में अपनी दुआएं भी पढ़ सकता है, अपनी दुआएं पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह आप सबसे बड़े सखी हैं, ऐ अल्लाह आप बहुत करीम और मेहरबान हैं, ऐ अल्लाह आप बहुत कुदरत वाले हैं, ऐ अल्लाह आपकी इज्जत के लिए कायनात की तमाम चीज़ें झुकी हुई हैं, ऐ अल्लाह आपकी अजमत के लिए तमाम चेहरे सजदा करते हैं, ऐ अल्लाह सब चेहरे फना होने वाले हैं, आप हमेशा बाकी रहने वाले हैं, ऐ अल्लाह आप मालिकुल मुलूक हैं, सब सवाल करने वालों और दुआ मांगने वालों के मालिक हैं, ऐ अल्लाह आप समी और बसीर हैं, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, ऐ अल्लाह आप अलीम और ख़बीर हैं। जितने लोग खामोश बैठे हैं, ऐ अल्लाह आप सबके दिलों का हाल जानते हैं, اے اللہ آپ کے دربار سے کوئی آدمی خالی نہیں گیا، اے اللہ ایسا کون ہے جس نے مانگا ہو اور اس کو نہ ملا ہو؟ اے اللہ آپ کے دربار میں کتنے لوگ بندے سر کو جھکاتے ہیں، اے اللہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہر زبان میں آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ لوگ آپ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اے اللہ آپ اتنی عظمت والے بادشاہ ہیں، سب کی دعا ایک ساتھ سن لیتے ہیں، اے اللہ آپ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، سوال کرنے والوں کا سوال آپ کو نہیں تھکا سکتا، اے اللہ آپ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اے اللہ جس کو آپ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اے اللہ آپ جس کی حفاظت فرمائیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے اللہ آپ ڈوبنے والے کو بچانے والے ہیں، ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں، اے اللہ آپ کے پیارے پیارے مبارک نام ہیں جن کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، اے اللہ آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اے اللہ آپ محروم کر دے تو اور کوئی دینے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ پسند فرما لیں تو آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے، اے اللہ آپ ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے ہیں، جلال اور بزرگی والے ہیں، ہمیشہ بھلائی کرنے والے ہیں، بہت برکت والے ہیں، بلند شان والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت اور قبولیت کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں ایسی رحمت فرما دیجیے جو آپ کی شان کے لائق ہے، اے اللہ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ ہمارے ہر گناہ غلطی کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا لیجیے، ہر بھلائی اور نیکی کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ ہمیں ہر آسانی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر تنگی سے بچا دیجیے، اے اللہ ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہو گئیں، اے اللہ ہماری تمنائیں ارادے ٹوٹ گئے، ہمارے اسباب کمزور ہو گئے، اے اللہ دنیا میں رہنے کا بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ جہنم سے بچا لیجیے، اے اللہ جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے، اے اللہ جب دنیا والے ہمیں بھول جائیں اور مٹی ہم کو ڈھانپ لے اور دوست اور رشتہ دار چھوڑ کر چلے جائیں اور سارا سامان دنیا چھوٹ جائے، اے اللہ اس اندھیرے میں اکیلے میں آزمائش میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے، اے اللہ ہم کو اکیلا مت چھوڑیے، ہمیں یاد رکھیے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ پیار و محبت عام فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کو بخش دیجیے، اے اللہ امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، اے اللہ امت کے خوف کو یا اللہ خوشی سے بدل دیجیے، اے اللہ پوری امت میں پریشانی بیماری تنگ دستی یا اللہ دور فرما دیجیے، اے اللہ تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اے اللہ مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو عورتوں کو اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اے اللہ زندگی کا مقصد سکھا دیجیے، اے اللہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ شیطان و نفس کی چالوں سے بچا لیجیے، اے اللہ تمام آفات مصیبتیں تنگی حادثات اے اللہ ہر چیز سے بچا لیجیے، آگے پیچھے دائیں بائیں اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو ذکر کے لیے شکر کے لیے اچھی نیتوں کے لیے دعا کے لیے یا اللہ کھول دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اچھی باتوں کے لیے کھول دیجیے، اے اللہ دین پر عمل کرنے والے دین پھیلانے والے ہو جائے، اے اللہ ہمارے نیک عمل کو نماز روزے صدقات تلاوت ذکر تسبیح درود اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ مزید نیکیوں کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ لمبی عمر دے دیجیے، صحت عافیت دے دیجیے، اے اللہ جو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائی، اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کے دلوں میں جو جو نیک حاجات ہیں اے اللہ سب کو غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں یا اللہ مسجدوں پر رات کے آخری پہر میں اور خانہ کعبہ میں اور رمضان اور حج کے دنوں میں، اے اللہ جہاں جہاں آپ کی رحمتیں اترتی ہیں اے اللہ ہم اس کسی کے قابل نہیں ہیں مگر ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.